नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास तथा स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में बनाए गए 2,35,000 आवासों के लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री चौहान पटना के बामिटी में कृषि जनकल्याण संवाद में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की तस्करी और नेटवर्क से निपटने के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दे दी है। दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नादिया में इसके लिए 4 पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इस पहल के लिए 591 नए पदों को मंजूरी दी है। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जातीय संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वो विफल रहा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।